الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम अपने हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम की किताब उमूर खानदारी में हुस्न इंतज़ाम में से रिश्तेदारियां निभाना का मौजू पढ़ रही हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दूसरा मौजू है जो हम इस किताब में पढ़ रही हैं। पहला जो था वो उमूर खाना यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट का था, और अब रिश्तेदारियां निभाना। तो वो पिछली क्लास के अंदर काफ़ी सारी इस पर बात हुई थी कि ईजी थिंग्स फर्स्ट, ये जो आसान काम होते हैं ना वो पहले करने चाहिए और उसके बाद फिर मुश्किल काम करने चाहिए। तो औरत की जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी बनाई है या रोल बनाया है वो यानी बुनियादी तौर पर या गालिब तौर पर वो घर की जिम्मेदारी और घर का रोल बनाया है, और दूसरे रोल जो हैं वो फिर उससे उसके तहत रहेंगे। और मर्द के जो है वो बाहर के रोल बनाए हैं और घर का रोल जो है वो उसके तहत रहेगा। तो अब चूंकि घर की जिम्मेदारी है तो घर के अंदर दो बुनियादी जुज होते हैं, एक तो वो घर के दरो दीवार और घर के अंदर मौजूद अशिया और घर के सामान वगैरह, ये सब घर का एक जुज होता है, एक हिस्सा होता है। और दूसरे घर वाले यानी जो इंसान उस घर के अंदर रहते हैं, तो वो उसके अलावा अगर कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो भी जाहिर है फिर वो भी जानदार ही होते हैं। तो घर वाले, तो उनमें सबसे आसान काम क्या है दूसरों के मुकाबले में? दूसरे यानी इसमें से कौन सा वाला जुज जो है वो ज्यादा आसान है? वो जो बेजान चीजें होती हैं उनकी सफाई सुथराई और उनकी मैनेजमेंट वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा आसान होती है, और जो घर वाले होते हैं तो उनकी जो है निस्बतन उन चीजों के मुकाबले में मुश्किल होती है। तो इस वजह से हम मुश्किल चीज जो है वो बाद में पढ़ रहे हैं। तो हजरत ने फिर लिखा था कि औरतों की जिंदगी का सबसे वीक पॉइंट यही होता है कि वो महरम रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात सही नहीं रख पाती हैं, क्योंकि गैर महरम रिश्तेदारों से तो ताल्लुकात रखने ही नहीं है, गैर महरम रिश्तेदारों से तो ताल्लुकात रखने ही नहीं है। अगर वो उम्र में बड़े हैं तो जब उनसे सामना हो गया तो बुरके के अंदर ही रहते हुए जब उनसे सामना हो गया तो अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं, बस मुकम्मल हो गई बात, ठीक है। या उन्होंने आगे से कोई सवाल पूछ लिया तो उसका अदब और तमीज के साथ जवाब दे दिया, जैसे खालू हैं, फुप्पा हैं, राइट। तो इस तरह के जो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं तो उनसे इस हद तक बातचीत कर ली, लेकिन ये ताल्लुक निभाना नहीं कहलाएगा, ठीक है, बस ये जरूरत के हद तक बातचीत कहलाएगी लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो दूसरे हैं जिनके साथ जो है वो फितने का ज्यादा अंदेशा होता है तो उनके साथ तो इसकी भी जरूरत नहीं है, या मजबूरन किसी सिचुएशन में मैं सलाम या जो उसका जवाब दे दिया वो भी कुफार ने तो बल्कि उसको नाजायज भी लिखा है कि गैर महरम के सलाम का जवाब देना उसको तो जायज भी नहीं लिखा, लेकिन जैसे भी है कम से कम ताल्लुक। फिर उसके बाद तो मसला फिर कहाँ पे रह गया? महरम रिश्तेदारों के साथ ही रह गया ना। तो महरम रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को सही नहीं रख पाती हैं तो कहीं पे खाविंद के साथ मसला, ठीक है। तो खाविंद तो वैसे टेक्निकली महरम रिश्तेदार नहीं आता, खाविंद होता है, तो उसके साथ मसला। कहीं सास के साथ यानी ससुराल वालों के साथ मसला, जिसमें ससुर भी आ जाते हैं, वो भी महरम रिश्तेदार होते हैं, तो उन लोगों के साथ मसला। कहीं औलाद के साथ मसला। तो ये मसाइल जो होते हैं ना ये जिंदगी का बेशतर वक्त जाया कर देते हैं या शैतान जाया करवा देता है इन मसाइल के जरिए से हमारा। तो इस वजह से इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मौजू के अंदर इन्हीं को हमने फिर समझाया है। तो फिर हमने जो अगला उनवान पढ़ना शुरू किया था कि रिश्ते को कायम रखने वाली तीन अहम चीजें, तो उनमें फरमाया था कि किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तीन चीजें बहुत अहम होती हैं, जिनमें पहला नुकता हमने पढ़ा था या पढ़ना शुरू कर दिया था कि लिसन केयरफुली, कि उसकी बात को आप तवज्जो से सुने। अच्छा, ये तो बात चल ही रही थी किताब में जो मौजूद चीजें हैं उन उनको पढ़ करके, लेकिन हमने इसके अंदर एक और भी इजाफा कर दिया था कि चूंकि हमारे पास तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हमने तो 1 घंटे में बयान खत्म नहीं करना, तो इस वजह से हमने अल्लाह के साथ रिश्तेदारी को, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को भी इसके अंदर शामिल किया था, और उसके ऊपर बहुत सारी बात पिछली क्लास के अंदर हुई थी। और उसमें फिर ये भी बात हुई थी ये लिसन केयरफुली का मामला फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक में भी अप्लाई होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे साथ मामला सारा का सारा लिसन केयरफुली वाला ही है, ठीक है। और फिर उसके जवाब में जो लिसन केयरफुली करता है तो फिर वो अल्लाह ताला के साथ बात भी केयरफुली करता है, यानी अच्छे तरीके से करता है, तकवा के साथ करता है। क्या मतलब? फिर वो दुआ भी अल्लाह ताला के साथ अच्छी मांगता है, नमाज जो कि अल्लाह ताला के साथ बंदे का तकल्लुम होता है तो वो भी उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन बात करने से पहले सुनना, ठीक है। तो सुनने के लिए अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं और बात करने के लिए एक जुबान दी है, ठीक है। तो सुनना ज्यादा और बात करना कम, और सिर्फ ज्यादा कम का इसमें तनासुब नहीं है कि सुनना ज्यादा और बात करना कम, बल्कि सुनने का मामला तकरीबन हर जगह ही, जहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तालीम दी अपने कुरान के अंदर, तो वहां पर हमेशा सुनने का मामला पहले रखा और उसके बाद जो है वो बात करने की बात रखी, ठीक है। तो हत्ता के देखने का भी मामला है, वो भी बात करने यानी सुनने के बाद रखा, ठीक है। तो अपनी भी सिफत जब बयान करी कि अल्लाह ताला समी है और बसीर, तो अपनी सिफत के अंदर भी इसी तकद्दुम और ताखुर को सामने रखा, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने अपनी भी सुनने की सिफत का पहले तस्करा किया और बसीर यानी देखने की सिफत का बाद में तस्करा किया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान पहले बनते हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें बनती हैं, ठीक है। उसके कान पहले काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि आंखें बहुत बाद में काम करना शुरू करती हैं, ठीक है। तो सुनने की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में सुनने के बारे में फिर बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल फरमाते हैं, ठीक है, बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल फरमाते हैं, और ईमान वालों को फरमाते, काफिरों को नहीं, बल्कि ईमान वालों को जो के इकरार करते हैं, हाँ भाई हमने मान लिया और हमने जो है वो तस्लीम कर लिया कि ये कुरान है और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उनको मुखातिब फरमाते हैं, या यो नजीना अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन, ठीक है। क्या पूछनी है, कितने बजे से शुरू हो? तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो और उसके रसूल से पीठ ना फेरो इस हालत में कि तुम सुनते हो, यानी वो तुम्हें पुकार रहे हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं और तुम उनकी बात सुन रहे हो, इस हालत में तुम उनसे पीठ ना फेरो। क्या मतलब? कि उनकी बातों को इग्नोर ना करो, उनकी बातों को कम तवज्जो ना दो। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, और उन लोगों की जैसे ना हो जाओ कि जो कहते हैं कि हमने सुन लिया है? वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, वहुम ला यस्मऊन, हालांकि हकीकत यह है कि वो नहीं सुनते, हालांकि हकीकत यह है कि वो नहीं सुनते, ठीक है। अब हम तो मारे गए ना इसके अंदर, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारे, हम कहते हैं हाँ जी हम तो सुनते हैं, हम तो जी सुनते हैं, ठीक है, और हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम आप तो हजरत कहते हैं और हम आपको हजरत जी कहते हैं और हम आपको पीर कहते हैं और हम आपको शेख कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सुनते उनते कोई नहीं है। इन्ना शर्रत दवाब इंद अल्लाह सुम्मुल बुक्मुल लदीना ला याकिलून, सबसे बदतरीन जो मखलूक है अल्लाह ताला की जमीन पर चलने वाली वो कौन है? जो के बहरे हैं, और नतीजतन गूंगे भी हैं जो कि अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ला याकिलून, अकल इस्तेमाल नहीं करते। वलो आलिम अल्लाह फीहिम खैरन ला अस्मअहुम, और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खैर देखता ना, ठीक है, यानी इनमें कोई मादा देखता, कोई तवज्जो देखता, कोई तलब देखता अल्लाह ताला इनके अंदर, तो उनको जो है ना वो सुनने की तौफीक दे देता, लेकिन इनके अंदर तलब ही नहीं थी, खैर ही नहीं देखी अल्लाह ताला ने, इनको सुनने की तौफीक ही नहीं दी, है ना। ठीक है, तो ऐसे सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जो कि सुनते हैं नहीं। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे अच्छी होगी जब हम सुनते ही नहीं हैं। ठीक है ना, आपके सामने आपके शौहर साहब बैठे हुए हो और आप उनसे कोई बात कर रही हो, और शौहर साहब जो है ना वो जरा फोन में मशगूल हो जाए या किसी और तरफ जो है वो आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दें, तो कैसी आग लगती है, लगती है कि नहीं लगती है, कैसी आग लगती है, ऊपर से जाहिर हो या ना हो, अंदर तो लग जाती है ना। ठीक है, तो आप तो बीवी हैं, आप तो मखलूक हैं, ठीक है, और शौहर को तो वैसे अल्लाह ताला ने कवाम बनाया, वो बड़ा आपके छोटे की बात नहीं सुन रहा, जो अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई ना ये तरतीब, ठीक है ना। आपको अच्छी लगे या ना लगे, अल्लाह से उसकी शिकायत करें, भाई मुझसे क्यों कर रही है उसकी शिकायत, ठीक है ना, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। तो छोटे की बात बड़ा ना सुने, छोटे को बुरा लगता है, तो बड़े की बात छोटा ना सुने तो बड़े को बुरा नहीं लगता, ठीक है, तो अल्लाह की बात ना सुने, ठीक है। तो अच्छा, ये पहला नुकता हो गया, और इसके ऊपर कोई कसर रह गई ये बोलने की, देखे समझ में कुछ आया होगा, या आग लगी भी हो तो फिर तो जाहिर कान भी बंद हो जाते हैं और साए साए करना शुरू हो जाते हैं, तो बात फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी हालत किसी की नहीं होगी, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो सुनेंगे ना इंशाल्लाह आइंदा से सबकी, ठीक है, खुसूसन बड़ों की, तो इरादा करें इंशाल्लाह, इरादा करने पे एक नेकी मिलती है ना, वह तब्दील भाई यही कहते हैं, इरादा करने पे एक नेकी मिलती है, बाकी अल्लाह ताला इरादे पे अमल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं, लेकिन इरादा ये हमने खुद करना होता है, इसी से फिर तलब अल्लाह ताला देखते हैं और फिर तौफीक अता फरमा होते हैं। दूसरा नुकता, ताल्लुकात को अच्छा बनाने के लिए दूसरा नुकता, डिटरमिन फीलिंग्स के उसके यानी बोलने वाले के जो एहसासात हैं उनको समझने की कोशिश करें, कि जो बात हो रही है उसके साथ उनके दिल के क्या जज्बात वाबस्ता है। जब इंसान कोई अपना मतमाए नजर या मुद्दा बयान करता है ना, तो वो चाहता है कि बंदा सुने भी और उसको समझने की भी कोशिश करे। इसी वजह से उर्दू जुबान के अंदर एक लफ्ज़, एक जुमला बड़ा मशहूर है, कहते हैं कि यार तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी तो सुनो, है ना। तो ये तुम मेरी तो सुनो का मतलब खाली नहीं होता कि तुम मेरे अल्फाज सुन लो लेकिन मेरे जज्बात को समझने की कोशिश ना करो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो बंदा जिन जज्बात से या जिस बैकग्राउंड के साथ वो बात कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करना ये भी अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके शौहर आपकी बात सुन तो रही हो लेकिन दिमाग उनका कहीं और हो, तो फिर भी मसला तो होता है ना, फिर दिमाग उनका कहीं और हो, सोचो कहीं और रहे हो, आपको अच्छी बात तो नहीं लगती ना, तो खाली सुन लेना ये तो मकसूद नहीं है, तो इसका तो वही मालूम मामला हो गया ना कि कालू समयना वहुम ला यस्मऊन, है सुन तो रहे हो लेकिन नहीं सुन रहे हो, इसी को सुनी अनसुनी करना भी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी यही मामला है, ठीक है, कि जब हम अल्लाह को सुनते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला का मकसूद भी और अल्लाह ताला की कैफियत भी समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के अंदर अपनी कैफियत भी बयान फरमाते हैं, देखो मेरे, अगर हम अल्लाह ताला के लिए दिल का लफ्ज इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे मशायख करते भी हैं, कि अल्लाह के दिल की क्या कैफियत होगी, अल्लाह ताला के की क्या सोच होगी, ठीक है, तो इस वजह से हम भी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि देखें अल्लाह ताला के दिल की क्या कैफियत है। कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्राका, ए इंसानो तुम्हें किसने धोखे में डाल दिया, बे रब्बिकल करीम, तुम्हारे करीम परवरदिगार से किसने धोखे में डाल दिया, यानी मेरी जज्बात को समझने की कोशिश करो कि मैं तो करीम परवरदिगार हूं, करीम कौन होता है,
जो के बिन मांगे देता है, ठीक है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। ए इंसानो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुमने मुझसे मांगा तो नहीं था। दुनिया में आने से पहले तुमने मुझे पैसे तो नहीं दिए थे, ना तुमने मेरे सामने डिमांड लिस्ट रखी थी कि मुझे इस दुनिया के अंदर दो हाथ चाहिए, दो पैर चाहिए, दो आंखें चाहिए, दो कान चाहिए, दो एक नाक चाहिए, एक जुबान चाहिए, एक सर चाहिए, राइट, और मुझे घर चाहिए, और मुझे घर वाले चाहिए, और मुझे माँ बाप चाहिए, और मुझे आगे जाने के बाद जो है वो तालीम चाहिए, और मुझे लिबास चाहिए अच्छा सा, और मुझे जो है वो औलाद चाहिए, मुझे अजदवाजी जिंदगी चाहिए। तुमने ये सब कुछ मांगा था मुझसे इस दुनिया में आने से पहले। मैंने बिन बिन मांगे तुम्हें दिया है ये सब कुछ, मैंने तुम्हें बिन मांगे सब कुछ दिया है, तो मैं तुम्हारा करीम परवरदिगार हूं। तो अल्लाह ताला अपने कैफियात को बयान फरमा रहे हैं ना, ठीक है, और इतना ज्यादा अल्लाह ताला को तलब है हमारी कि फरमाते हैं वमा कदर हक कदरी, कि इन लोगों ने कदर नहीं करी जैसे कि उस परवरदिगार की कदर करनी चाहिए, कि उसने जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ तो उस परवरदिगार ने दिया, लेकिन तुमने कदर नहीं करी। अब देखिए, इस तरह की कोई बात करता है तो उसकी कैफियत का एहसास नहीं होता, अंदाजा नहीं होता, ठीक है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम जो सुन रहे हैं, तो इन कैफियत को मद्देनजर रखते हुए सुनेगा कि वेयर इज अल्लाह कमिंग फ्रॉम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेयर इज दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, राइट, क्या उसकी जो है वो सोच है, ठीक है, क्या बयान करना चाहता है वो, उसके दिल की कैफियत क्या है। अच्छा, अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कैफियत बयान नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत भी बयान फरमाते हैं ना, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत क्या है हमारे लिए, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसकुम, ये तहकीक के तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कि जिसको तुम्हारी हर तकलीफ, जो भी तुम्हारे ऊपर बोझ बनती है ना चीजें, वो बहुत गिरा महसूस होती है, यानी उनके दिल की कैफियत ये है कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आती है तकलीफ उनको होती है, तकलीफ उनको होती है, कितना हसास दिल है उनका, कितना हसास दिल है उनका। कोई इंसान ने ये नहीं फरमा रहा, बल्कि उनका खालिक ये उनके बारे में बता रहा है। खालिक को नबी अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत का नहीं पता होगा तो किसी और को पता हो सकता है, राइट। तो फरमाते हैं कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कि तुम्हारे ऊपर तकलीफ होती है, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, लेकिन उनको तकलीफ होती है, वो उसको महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, हरीस, ये हरीस का जो लफ्ज है उर्दू में तो ये सिर्फ बुरे मानों में इस्तेमाल होता है, हिर्स, लालच, तमा, बुरे मानों में इस्तेमाल होता है, ये लालची के मानों में हरीस है ये तो बहुत, लेकिन अरबी जुबान के अंदर ये अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होता है। हरीसुन अलैकुम, उसको तुम्हारे भलाई की धुन लगी हुई है, भलाई की धुन लगी हुई है, ऐसे मुफ्ती तकी हमारे सामने इसका तर्जुमा किया है। बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, वो ईमान वालों के साथ रऊफ है, रहीम है, इंतहाई शफीक है, निहायत मेहरबान है वो। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की दिल की कैफियत है, हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की कैफियत को भी समझने की कोशिश करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत को समझने की कोशिश करें, लेकिन हम तो सुनते ही नहीं है, समझने की कोशिश तो बात की बात होगी ना, हम तो सुनते ही नहीं है, हम दुनिया जहान की बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के न जाने किस किस को सुनते हैं, राइट, लेकिन एक नहीं सुनते तो अल्लाह का कलाम नहीं सुनते और नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनते, राइट। तो जब उनसे ही ताल्लुक हमारा इतना खराब है कि हम ना उनकी सुनते हैं ना उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर शौहर के साथ ताल्लुक कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, ससुराल वालों के साथ ताल्लुक कैसे अच्छा हो सकता है, औलाद के साथ ताल्लुक कैसे अच्छा हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमें इस गलती से तौबा करनी है ना, इस गलती से तौबा करनी है, और अपने खालिक और अपने ससुराल वालों के खालिक और अपने शौहर अपनी औलाद के खालिक और मालिक उसके साथ ताल्लुक को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो दूसरा नुक्ता क्या था, डिटरमिन फीलिंग्स की, उसके जो एहसास हैं उनको समझने की कोशिश करें कि जो बात हो रही है उसके साथ उनके दिल के क्या जज्बात वाबस्ता है। और तीसरा नुक्ता है, यानी रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए तीसरा नुक्ता है कि अंडरस्टैंड रियल मीनिंग, कि उनका जो असल मकसद होता है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें भी यानी एक तो तर्जुमा हो गया ना, जैसे कि जो उसने अल्फाज कहे हैं उसका तर्जुमा, अगर अरबी जुबान में, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बात और अल्लाह ताला की बात अरबी जुबान में हम तक पहुंच दिया तो उसका तर्जुमा समझना, लेकिन उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यही मामला जो है फिर इंसानों के साथ, अब चूंकि हजरत जी ने तो यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात करी है, वो तो हमने जो है वो उसमें ऐड कर दिया है ना अल्लाह उसके रसूल की बात को, क्योंकि वक्त की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जब तक है मौका अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा ये मामला, अल्लाह ताला जब तक मौका दे रहे हैं, हमें नहीं पता कब तक दे रहे हैं, लेकिन हमने तो कोई आगे से सेट नहीं किया हुआ तो। लेकिन हजरत जी के पास लिमिटेड टाइम था, तो हजरत जी ने उसको इंसानों में महसूर किया हुआ है। तो अब हजरत जी ने अगली बात क्या फरमाई कि औरतों में आमतौर पर बात सिर्फ एक लफ्ज में बता देने की कोशिश की जाती है, वैसे तो हजरत किसी और कॉन्टेक्स्ट से ही बात कर रहे हैं, वरना तो बात हो ऐसी होती है कि खत्म ही नहीं होती। ठीक है, अक्सर लोगों पर बात हो रही है तो बस हो रही है, खत्म ही नहीं हो रहा, कि रोकना पड़ जाता है, रोकना पड़ जाता है तो फिर उसके बाद दूसरे मसले पड़ जाते हैं। तो एक लफ्ज में, लेकिन हजरत किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बात बता देने की कोशिश की जाती है, या इनडायरेक्टली बिलवास्ता बता देने की कोशिश की जाती है, तो हमेशा उनकी बात को ट्रांसलेट करना पड़ता है कि ये चाहती क्या है, अक्सर में इंटरप्रेट करना पड़ता है कि चाहती क्या है। तो मर्दों में फिर ये लतीफे तो आपको पता ही है कि हमारे बल्कि साहिबजादा साहब ही हैं, बड़े बड़े लतीफे लतीफे वगैरह की चीजें भी लिखते रहते हैं हजरत जी के जो बेटे साहब हैं। तो उन्होंने एक दफा बड़ी अच्छी, यानी वो लतीफा भी नहीं था, वो तो एक हकीकत थी कि हमारे मुआशरे की क्या, यानी अखलाकी हालात क्या है, कि जो नाजायज ताल्लुक होता है या जो गैर महरम औरत होती है तो उसके बारे में तो अशार कहे जा रहे होते हैं और अपनी बीवी के बारे में लतीफे कहे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो फिर दोनों तरफ, हर तरफ का ये मामला है, मर्दों और औरतों दोनों का ही अजीब अजीब किस्म के मामला, तो मर्दों में भी इसी किस्म की चीज है। ठीक है, तो अपनी बीवी के ऊपर जो है वो लतीफे कसे जा रहे होते हैं और दूसरों की बीवियों के ऊपर जो है वो अशार और माशूका किस्म के चीजें कही जा रही होती है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, वरना तो फिर उसके ऊपर अजाब ही बनता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो बात हो रही है उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में बात क्या है कि भाई मर्दों के अंदर एक बात मशहूर भी हो गई, लतीफे की हद तक मशहूर हो गई, कि अगर बेगम साहिबा कहे ना कि नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये होता है कि चाहिए। ठीक है, अगर वो ये कहें कि नहीं जाना है तो इसका मतलब ये होता है कि उनको जाना है, लेकिन कह नहीं रही है कि मुझे जाना है। ठीक है, क्यों नहीं कह रही है, बस अब ये आप उसको बेगम जी की जज्बात से इसको रिलेट कर दें, ठीक है, या जो है वो शौहर की जाति की से इसको रिलेट कर दें, या ये जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसको रिलेट कर दें। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने चूंकि हुक्म फरमा दिया था कि या यू नजीना आमनू तकुल्लाह, क्या है पीछे क्या है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना तो याद है ना कि कूलो कौलन सदीदा, क्या फरमाया था अल्लाह ताला ने, और ये सिर्फ मर्दों को तो नहीं फरमाया था, कूलू कौलन सदीदा कि सीधी बात किया करो, ये औरतों को भी तो फरमाया था ना, कूलू कौलन सदीदा कि सीधी बात किया करो, लेकिन शैतान ने कहा हमें अल्लाह का हुक्म मानने के लिए, कहा शैतान ने हमें मौका देना है। ठीक है, तो अब जहां अल्लाह का हुक्म टूटता हो, जिस तरह भी टूटता हो, तो कूलू कौलन सदीदा भी तो अल्लाह का हुक्म है ना, तो अब वो नहीं याद रहेगा, बस अपने जो है ना वो जज्बात याद रहेंगे, या शौहर की ज्यादती याद रहेगी, या कोई और जो है वो हिकमत याद रहेगी कि मैंने सीधी बात नहीं करनी है, टेढ़ी बात करनी है। भाई अल्लाह का हुक्म आपको क्यों नहीं याद रहता, आप क्या अल्लाह की बंदी नहीं है क्या? सिर्फ शोहर अल्लाह का बंदा है क्या? ख्याल है आप अल्लाह की बंदी नहीं है क्या? आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म नहीं दिया कुलू कौलन सदीदा? तो आप क्यों नहीं बात सीधी करती है? वहां पे 100 जो है ना अपने दलाइल आ जाएंगे कि भाई वो सीधी बात सुनते ही नहीं है और सीधी बात करने का फायदा नहीं होता और सीधी बात करने से जो है वो हंगामा हो जाता है, तो अल्लाह का हुक्म किधर चला गया है? हंगामा होता है तो अल्लाह ताला नहीं है उसको संभालने वाले, राइट? शौहर की बात समझ में नहीं आती तो अल्लाह ताला के पास ये ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है कि शौहर को समझाए, शौहर की जो है वो सीधी करें मसले को। ये सब आपने खुद करना है कि आप सीधी तरह बात नहीं सुनते तो फिर जो है मैं तेरी तरह की बात करूं। अल्लाह ने कुछ नहीं करना, अल्लाह ने कुछ नहीं करना ना, जो करना है मैंने खुद ही करना है, इस वजह से तेरी बात करूंगी, ठीक है? तो कूलू कौलन सदीदा का हुक्म है, तो बस सीधी बात करनी चाहिए, ठीक है ना? अपने आप को मजबूर करें, अपने आप को जो है वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर लेकर के आए, चाहे जो है वो अपनी बात चलती हो, बजाहिर चलती हुई नजर आ रही हो, चाहे चलती हुई ना नजर आ रही हो, ठीक है? तो ये बहुत बहुत सारी चीजें इस तरह की नजर आती हैं जिसके अंदर खाम खा की जो है ना, अब पाओ का जेवर, ठीक है, और ये आवाजें निकालने वाली हील्स, शैतान जो है वो कोई और चीज नहीं, मतलब कुछ और नहीं सूझा उसको ना, ये हील्स किधर से आ गई जिसके चलने की वजह से जो है ना आवाज पैदा होती है? वो अल्लाह का हुक्म है ना कि बस ऐसे ना चलो कि आवाज पैदा हो। तो अब जो है ना वो जूतों में ऐसा किस्म का जूता बनाना कि जिससे कि आवाज पैदा हो, ठीक है? क्यों, क्या हो गया भाई? अगर फैशन करने के कोई और तरीके नहीं रह गए थे, राइट? अपने आप को संवारने के कोई और तरीके नहीं रह गए थे? नहीं, ऐसा तरीका इख्तियार करो जो कि अल्लाह के हुक्म को, है ना? ऐसा तरीका ही इख्तियार करो जो अल्लाह के हुक्म को तोड़े। कोई दूसरा तरीका जो अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ा हो, उसमें मजा क्या आएगा? उसमें कौन सा मजा आएगा, उसमें कौन सी जो है वो फायदा होगा तुम्हें? जब तक अल्लाह का हुक्म ना टूटे तो फायदा ही क्या, तो मजा ही कैसा? फिर तो वो बोरिंग हो जाएगा ना, जिसको कहते हैं ना बोरिंग, तो जमीन में कड़ा खोदने वाली बोरिंग नहीं बल्कि बोर होने वाली बोरिंग, ठीक है? उसी तरीके से कूलू कौलन सजीदा अल्लाह का हुक्म था, उधर जो है वो जड़ा टेढ़ी बात करनी शुरू कर दी। इन्होंने सवाल लिखा है, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। क्या शैतान को अल्लाह का हर हुक्म पता है, जो वो हमेशा उसको उल्टा करने की कोशिश में रहता है? जी, इसका जवाब जवाब कौन देगा इसका? इनका सवाल बड़ा अच्छा है वैसे, ठीक है? क्या शैतान को अल्लाह का हर हुक्म पता है, जो वो हमेशा उसको उल्टा करने की कोशिश में रहता है? आपका क्या ख्याल है? आपने नहीं सुना होगा यकीनन, इसी वजह से आप ये सवाल पूछ रही हैं। आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि शैतान आलिम है, शैतान आलिम है, बल्कि आलिम भी कोई छोटा मोटा नहीं है, अल्लामा से भी बड़ा आलिम है शैतान, ठीक है? बल्कि वो सिर्फ आलिम नहीं है, वो आरिफ भी है, आरिफ। और वो आरिफ ही खाली नहीं है बल्कि वो आबिद भी, अब इसके लिए है कि ना इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं लगता, वो आबिद भी था, यानी बजाहिर इबादतें करने वाला वो था, अब तो नहीं करता होगा, लेकिन जब वो फटकारा जाने वाले वक्त से पहले जो है वो आबिद भी था, इबादत भी बहुत करता था, ठीक है? लेकिन आशिक नहीं है, बस एक चीज कम थी तो वो उसको दे दूंगी, आशिक नहीं था जी, उसको सारे अल्लाह के हुक्म पता है, आपको तो उसके अशर अशीर भी नहीं पता जितना कि उसको पता है, ठीक है ना? तो जरा अच्छा हुआ किसी को नहीं पता होगा ये बात, तो उसको भी आपके वास्ते से पता चल गई। अच्छा, तो फरमाते हैं कि अगर ये तीन पॉइंट्स जहन में रहे तो रिश्तेदारियां बरकरार रह सकती, अगर ये तीन पॉइंट्स, ठीक है? लिसन केयरफुली, डिटरमिन फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड रियल मीनिंग्स। तो अब बात असल में यहां तक थी, वो जो औरतों वाली टेढ़ी वाली बात जो है ना, ये इसके अंदर जुमला मुतरजा के तौर पर बीच में डाली है, आ गई होगी हजरत के जाहिर मशवत, हजरत ने बयान फरमाया। बहरहाल, तो अब जो है वो अगला
उन्वान है दिल और जज्बात एक साइंसी तहरीक। ठीक है, अब जाहिर है ये बयान जो है वो कोई साइंस का बयान नहीं है, ना ये जो साइकोलॉजी का बयान है, और ना जो है ये बयान तो क्या, ना जो है वो अल्लाह की किताब जो है वो साइंस की किताब है, ना जो है वो साइकोलॉजी की किताब है। लेकिन बात को समझाने के लिए और ज्यादा जहन नशीन करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो साइंसी दलाइल वगैरह इस्तेमाल कर लेना, ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि उससे फायदा ही होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी इस किस्म की बातें अपने कुरान मजीद में रखी हैं, और हमारे मशाइख भी जो है उन बातों के अंदर इस तरह की बातों को, साइंस वगैरह की बातों को शामिल रखते हैं। तो हम भी इसी फायदे की ही नीयत से और अपने बड़ों के इत्तबा की नीयत से इसको पढ़ेंगे। तो फरमाते हैं कि इंसान के दिल को अल्लाह ताला ने जज्बात का मरकज बनाया है। ठीक है, जज्बात का मरकज, फीलिंग्स का, दिल को मोहब्बत के जज्बात, नफरत के जज्बात, खुशी और गम के जज्बात, ये सब दिल से वाबस्ता है। अच्छा, 1970 से पहले, 1970 से पहले साइंस की दुनिया इस चीज से इख्तिलाफ करती थी। ठीक है, साइंस की दुनिया क्या चीज होती है भाई? आजकल के दौर में साइंस की दुनिया उन लोगों को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदे की बुनियाद पर चीजें तय करते हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है। किस बुनियाद पर भाई? क्योंकि ये नजर आता है, ये सुनाई देता है, इसको आप टच कर सकते हैं, इसको जो है वो आप सूंघ सकते हैं, और इसको जो है ना वो आप चख सकते हैं। तो ये जो मुशाहदे पांच हिस्सों के जरिए से किए जा सकते हैं, तो इनकी बुनियाद पर जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। ठीक है, अब जन्नत को आप नहीं कर सकते तो वो नहीं है, जहन्नुम को आप नहीं कर सकते तो वो नहीं है, अल्लाह को आप नहीं कर सकते तो नहीं है, अर्श को आप नहीं कर सकते तो वो नहीं है। ठीक है, ये आजकल की साइंस है, ये इस्लामी दौर की साइंस ऐसी नहीं थी। ठीक है, जिस साइंस की बुनियाद पर मुसलमानों ने बड़े बड़े हथियार भी बनाए थे, बड़ी बड़ी तामीरात भी करी थी, और बड़ी बड़ी जो है वो सड़कें भी बनाई थी, और बड़े बड़े जो है वो डैम्स भी बनाए थे, और बड़े बड़े जो है वो दूसरे किस्म की चीजें बनाई थी, वो भी साइंस ही की बुनियाद पर बनाई थी ना मुसलमानों ने। ठीक है ना, वो कोई मुराकबे करके नहीं बनाई थी। आज अक्सर ये बात करता रहता है, लेकिन बहुत जरूरी है ये बात करना, कि ये नहीं हुआ था कि मुसलमान मुराकबे करते करते एकदम से जो है वो डैम बन गया इधर, एकदम से उधर ताजमहल बन गया, एकदम से वो मुराकबा किया उन्होंने, अल्लाहू अल्लाहू के जो है ना उन्होंने जरबे लगाई और उधर जाकर के जो है वो एक तोप बन के तैयार हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही के अंदर मेहनत करी थी, ठीक है, और उससे वो चीजें तैयार हुई थी। ठीक है, लेकिन वो साइंस जो थी वो ईमान की बुनियाद पर थी, वो साइंस उसकी बुनियाद में ईमान था, अल्लाह पर, आखिरत पर, जन्नत पर, जहन्नुम पर। ठीक है, और फिर साइंस उसके बाद थी। काफिर की साइंस बिल्कुल उलट, बल्कि उसमें उलट नहीं, उसमें तो अल्लाह और रसूल और आखिरत और जहन्नुम वगैरह सबका इनकार। ठीक है, इस वजह से भाई हम इसके खिलाफ हैं, और आप अगर नहीं है खिलाफ तो क्यों नहीं है? क्या आप काफिर हो चुकी हैं जो आप इसके खिलाफ नहीं है? ठीक है, क्या ख्याल है? अगर आप आज की साइंस के खिलाफ नहीं है इस बुनियाद पर, तो फिर क्यों नहीं है इसके खिलाफ? ये सवाल करना चाहिए अपने आपसे, क्या नहीं करना चाहिए ये सवाल अपने आप से? ठीक है, तो फिर जो नहीं करता तो फिर उसको अपन समझ आता, फरमाइए यही कह सकते हैं और क्या कह सकते। तो बहरहाल हम साइंस के खिलाफ नहीं है, हम तो आजकल के साइंस के खिलाफ है ना, और आपको भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल लिख लें अपने पास। अच्छा, 1970 से पहले साइंस की दुनिया से इख्तलाफ करती थी, तो वो कहते थे कि दिल तो एक पंप की तरह है, दिल में एक तरफ सुकून आता है तो उसको दूसरी तरफ भेज देता है। ठीक है, क्योंकि उनके मुशाहदे में अब तक और कोई चीज आई नहीं थी, बस पंपिंग स्टेशन ही आया था उनके मुशाहदे में, इस वजह से उन्होंने यही कहा। तो दिल के बारे में ये कहना कि इसमें मोहब्बत होती है और फना चीज होती है, ये चीज डॉक्टरों की समझ में नहीं आती थी। तो 1970 में ये दरियाफ्त हुई कि इंसान के दिल का उसके ब्रेन के साथ एक ताल्लुक है। ठीक है, ब्रेन के साथ ताल्लुक, इतना दरियाफ्त हुआ 1970। और इंसान के दिल से मैसेजेस ब्रेन के इमोशनल पार्ट में जाते हैं। ठीक है, ब्रेन का इमोशनल पार्ट, पर वो भी उन्होंने तय किया कि जी वो जो सामने का हिस्सा होता है ना, ठीक है, जिसके बारे में सूरह अलक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है। ठीक है, जिसके आखिर में, सूरह अलक के आखिर में जिसका जिक्र है, तो तिलावत कर लेंगे तो आप सबके ऊपर सजदा वाजिब हो जाएगा, जो कि खामखा आपको अभी मतलब मुश्किल में ही डालना चाहते हैं, तो वो उसमें किसने के वायदा सजता है। ठीक है, तो इंसान के दिल से मैसेजेस जो है ना वो ब्रेन के इमोशनल पार्ट में जाते हैं। चुनाचे 1970 में डॉक्टरों ने यह तस्लीम किया कि दिल और दिमाग का जो ताल्लुक है ये टू वे चैनल है, दो तरफा चैनल की मान, ये दो तरफा हाईवे है, ये इधर से भी मैसेज उधर जाते हैं, उधर से भी मैसेजेस इधर आते हैं। दिमाग दिल को मैसेज भेजता है और दिलो दिमाग और दिल दिमाग को मैसेज भेजता है। ये मामला इसी तरह रहा हत्ता के 1991 में ये बात दरियाफ्त हुई कि दिल के अपने अंदर एक छोटा सा ब्रेन होता है और उसका अपना नर्वस सिस्टम होता है, 1991 में जाकर। ठीक है, और आज आज से ये जो है वो तकरीबन 30, हाँ तकरीबन 30 या 25 साल कम अज कम हो गए ना इसको, नहीं 10, 20 के करीब। तो इसका अपना नर्वस सिस्टम होता है और हार्ट अपने सिग्नल भेजता है, इसकी दलील ये थी आप यानी मैथमेटिक्स में याद है हमारा, तो इसका अपना नर्वस सिस्टम हो सकता है और हार्ट अपने सिग्नल्स भेजता है, उसकी दलील ये थी कि बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो उसका हार्ट पहले बीट करना शुरू करता है जबकि अभी उसका दिमाग नहीं बना होता है। ठीक है, कुदरतन कुछ देर पहले ही कान और आंख की बात हुई थी तो अब जो है वो दिल और दिमाग की भी बात हो गई कि हार्ट पहले बीट करना शुरू कर देता है यानी काम भी शुरू कर देता है अपना, लेकिन दिमाग अभी बना ही नहीं होता। भाई दिमाग तो अभी बना ही नहीं लेकिन इससे पहले ही उसका दिल बीट करना शुरू कर देता है। तो फिर डॉक्टरों ने यह तस्लीम किया कि दिल के अंदर अपना एक ब्रेन होता है, क्यों यानी बीटिंग का जो है वो ब्रेन से क्या ताल्लुक, इसलिए क्योंकि ब्रेन जो होता है ना वो डिसीशन लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसीशन जो है ये ब्रेन की चीज समझी जाती है ना। ठीक है, तो अगर जो है वो हार्ट बीट कर रहा है यानी कोई अमल कर रहा है, ठीक है, तो अमल के लिए तो फिर डिसीशन मेकिंग की जरूरत पड़ती है ना कि जी करना है कि नहीं करना है, तो डिसीशन मेकिंग तो दिमाग में होती है, तो फिर अगर दिमाग ही नहीं बना तो फिर जो है ये अमल कैसे हो रहा है। ठीक है, यही कुदरतन जो हमारी एक और क्लास अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है उसके अंदर अमल और फेल के ऊपर आप लोगों ने, जो लोग उसमें थी उन्होंने वो बात सुनी होगी कि अमल क्या चीज होती है और फेल क्या चीज होती है, जिसमें इख्तियार, जिसमें जो है नीयत, जिसमें इरादा शामिल होता है वो कुछ और चीज होती है और अमल जो है वो कुछ और चीज होती है। बहरहाल कोई बिल्कुल अलग डिस्कशन है लेकिन यहाँ थोड़ा उसका लिंक बन रहा था इस वजह से क्या दिया। तो डॉक्टरों ने तस्लीम किया कि दिल के अंदर अपना एक मिनी ब्रेन होता है, छोटा सा दिमाग होता है क्योंकि वो एक्शन कर रहा होता है ना, एक्शन हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय सम काइंड ऑफ ब्रेन। ये मामला इसी तरह चलता रहा हत्ता के 2014 में एक नई दरियाफ्त हुई कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो होता है तो बेसिकली ब्रेन के अंदर जो है ना वो ये जितने काम होते हैं ये सिग्नल्स की वजह से ही होते हैं। आप पेज चेंज करती हैं और हमारे जो है वो स्क्रीन बंद हो जाती है, 1 मिनट। हाँ, तो ब्रेन जो है ना इसके अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं तो ये सिग्नल्स की बुनियाद पर होते हैं, और सिग्नल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो होती है ना वो कमांड्स जा रही होती है, यहाँ से वहां कमांड्स जा रही होती है, वहां से यहाँ अहकाम जा रहे होते हैं, इस तरह से काम होता है। तो बेसिकली न्यूरॉन्स, ठीक है, ये न्यूरॉन्स ही की बुनियाद पर दिमाग का काम हो रहा होता है। तो मिनी ब्रेन होने का मतलब क्या हुआ, वो फिर उनको 2014 में समझ में आई कि जी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी जिसके ऊपर बाकायदा कमांड्स के सिग्नल्स जा रहे होते हैं। अब सॉरी, दिमाग के अंदर तो न्यूरॉन्स होते ही हैं लेकिन दिल के अंदर भी 40,000 न्यूरॉन्स को पाया गया, 40,000। ठीक है, अब दिल के अंदर जो 40,000 न्यूरॉन्स हैं, अब सोचे कितने छोटे होते होंगे क्योंकि इंसान का दिल बहरहाल कितना बड़ा होता है, जितना आपकी ये कलाई है ना, फिस्ट, जिसको कलाई नहीं बल्कि जिसको जिसको फिस्ट कहते हैं, तो जितना बड़ा इंसान का हाथ होता है ना, आप जो अपने मुट्ठी को जो आप बंद करें भेजें
तो जितनी बड़ी मुट्ठी है ना इतना बड़ा आपका दिल है, ठीक है। तो इस छोटे से दिल के अंदर 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब दिल के अंदर जो 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, ये असल में दिल का एक छोटा सा दिमाग है जो पायलट दिमाग है, ठीक है। और देखा यह गया है कि जो उसकी कैफियत होती है वही फिर बड़े ब्रेन तक पहुंचती है। हाँ, हथेली, तो फिस्ट जिसको आप, मुट्ठी जिसको कहा तो उसको। तो गोया कि ये न्यूरॉन्स का होना ये दिमाग ही है असल, ठीक है। तो यहां पर दिमाग की बाकायदा वैसी शक्ल नहीं है जैसे कि सर के अंदर जो दिमाग होता है उसकी शक्ल होती है, बल्कि ये न्यूरॉन्स जो लिपटे हुए हैं दिल के ऊपर यही उसके दिमाग का काम दे रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग असल में किसी एक शक्ल वाली चीज का नाम नहीं है, बल्कि असल में वो फंक्शनैलिटी है, असल में वो अमल है जो कि डिसीशन मेकिंग का काम करता है। अब वो अमल जो है वो यहाँ पर इन 40,000 न्यूरॉन्स के जरिए से हो रहा होता है, बेशक उनकी अपनी कोई अलग से शक्ल नहीं होती, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हमने लुकअप किया तो उसका नाम रखा हुआ है इंट्राकार्डियक नर्वस सिस्टम। इंट्रा कार्डियक, कार्डियक का लफ्ज है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियक वार्ड जो अस्पतालों में होते हैं जहाँ पे दिल के अमराज का इलाज होता है। तो इंट्रा कार्डियक नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा इसका नाम साइंसदानों ने रख दिया। तो कुरान मजीद ने तो 1400 साल पहले बता दिया था लहुम कुलूबुन या अकिलून बिहा, कि क्या ये लोग जमीन में, ये पीछे से सूरह हज की आयत चल रही है, कि क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं है ताकि ये मंजर देखकर उनके दिल ऐसे हो जाते, लहुम कुलूब, उनके कुलूब ऐसे हो जाते कि जिनसे वो हक को समझ पाते, समझ सकते, या अकेलू नबी, यानी कुलूब से वो समझ पाते बात, क्योंकि ये आकला याकिलू या अकला याकिलू जो है ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो समझने का ताल्लुक जो है वो अकल के साथ होता है, और अकल कहां पर होती है, दिमाग। तो शरीयत ने तो पहले बता दिया था कि दिल इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है, साइंस नहीं मानती थी इस बात को, लेकिन 2014 में इस चीज को तस्लीम कर लिया गया कि ये जो 40,000 न्यूरॉन्स के साथ दिल के अंदर मिनी ब्रेन है, ये वाकई इंसान के अंदर जज्बात को पैदा करता है। चुनाचे ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन, मोहब्बत के हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। औलाद के लिए मोहब्बत, और माँ बाप के लिए मोहब्बत, और शौहर बीवी के लिए मोहब्बत, और दूसरे दोस्त अहबाब के लिए मोहब्बत, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन, ये बाकायदा हार्मोन्स होते हैं, ये इंसान के इस दिमाग जो मिनी ब्रेन है उसके अंदर पैदा होते हैं, और फिर ये इंसान के दिमाग तक जाते हैं, यानी सर वाले दिमाग तक जाते हैं। इससे पता चला कि मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ, ठीक है। यानी ये सारी बात क्यों करी, असल में वही को प्रूफ करना था कि देखो आज की जो मुशाहिदाती साइंस है ना वो भी वही ही को जो है वो तस्लीम करने पर मजबूर, ठीक है, इनकार नहीं कर सकते। तो या वो नहीं माने, कम से कम हम तो उनके मुशाहिदात और उनकी इस जो फाइंडिंग्स हैं उनकी बुनियाद पर हमारा ईमान जो है वो यकीन में तब्दील होना चाहिए, मजीद जो है वो हमें पक्का, न सिर्फ ये कि एतमाद पक्का होना चाहिए बल्कि हमारा शौक बढ़ना चाहिए अल्लाह के कलाम को सुनने और समझने के लिए, ठीक है। ये मकसद है सारी बात का, दिल की तब्दीली से जज्बात में तब्दीली। इस चीज का एक प्रैक्टिकल तजुर्बा भी किया गया, एक बंदा था कि जिसके दिल को ट्रांसप्लांट करना था, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, दिल जो है वो उसका किसी वजह से खराब हो गया। ये बंदा गोश्त खाता था और बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, और इसकी जिंदगी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं थी, ये गे था, यानी मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता, यानी इंतहाई बुरी जिंदगी, हर तरह से बुरी जिंदगी गुजारता था, ठीक है। तो उसकी जिंदगी इस तरह की थी, जब उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया तो जो डोनर यानी देने वाला था वो इंसान वेजिटेरियन यानी सब्जी खोर था, ठीक है, क्योंकि उनके मुआशरे के अंदर मीट ईटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अनहेल्दी चीज खा रहे, ठीक है, क्यों? उनके यहाँ मीट मीन्स अनहेल्दी, वाई इज दैट सो? बिकॉज मीट उनके यहाँ जो है वो पहली बात तो सुअर से शुरू होता है, ठीक है, PIG से, तो PIG तो उसको तो आप हलाल कर ही नहीं सकते ना, ठीक है, तो वो नुकसानदेह ही नुकसानदेह है। और फिर उसके बाद जब इवन गाय और बकरे और मुर्गी और इन सब की भी बारी आती है, तो उनके अंदर भी चूंकि वो हलाल किया ही नहीं जाता, उनके अंदर जो है वो ब्लड जो है वो बाकी रह जाता है, जिस्म के अंदर ब्लड बाहर निकलता ही नहीं है, जबीहा के जरिए से जो निकाला जाता है, तो उनके यहाँ इवन गाय बकरा और मुर्गी वगैरह भी जो है ये भी नुकसान है, उनका गोश्त भी नुकसान, ठीक है। और तीसरा दर्जा नुकसान का क्या मीट के साथ, वो ये के जो कि हमारे यहाँ भी है, ठीक है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुअर नहीं होता गोश्त में, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गैर जबीहा नहीं होता है, अक्सर वो यानी गुमान तो ये रखते हैं कि नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तीसरी चीज हमारे यहाँ भी मौजूद है, वो क्या कि ये जो कैटल होती है, गाय बक मवेशी जो होते हैं, और इसके अलावा जो पोल्ट्री में जो चीजें होती हैं, मुर्गी मुर्गा वगैरह, तो जो उनको गिजा खिलाई जा रही होती है वो इतनी ज्यादा जो है वो खराब गजा होती है, इतनी ज्यादा खराब गजा होती है, और जो उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं, हॉर्मोनल इंजेक्शन वगैरह, तो उनकी वजह से गोश्त जो होता है वो खराब होता है, ठीक है ना, यानी वैसा प्योर ऑर्गेनिक नहीं होता जैसे कि उसके बगैर होता, ठीक है, तो उनके मुआशरे में तो गोश्त की तीन दर्जों में जाकर के खराबी ही खराबी है, इसी वजह से सिर्फ वेजिटेरियन को जो है वो सेहतमंद समझते हैं, लेकिन फिर क्या मसला कि वेजिटेरियन के अंदर भी वही है, वहां पे भी जो है वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें डाल डाल करके, वे वेजिटेबल्स कौन सी जो है वो सेहतमंद, यानी पूरा का पूरा फसाद ही फसाद है ना, पूरा का पूरा फसाद ही फसाद, ठीक है। और हमारे यहाँ भी वो चीज भी, हमारी भी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी उन्हीं की जो है वो पेस्टिसाइड्स और जो है वो केमिकल यूज करके हमारे यहाँ भी उगाई जा रही होती है, ठीक है, तो लेकिन खैर वेजिटेरियन को जो है वो फिर भी कम से कम गोश्त खोरी के मुकाबले में वेजिटेरियंस को जो है वो सेहतमंद लाइफ स्टाइल समझा जाता है बींग ए वेजिटेरियन, क्योंकि कंपेरेटिवली स्पीकिंग बात हो रही है ना, बस खराबी हर चीज के अंदर हो गई है। तो जब उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया तो जो डोनर था वो वेजिटेरियन सब्जी खोर था, और बड़ा वक्त का पाबंद था, नज्म व जब्त का पाबंद था, और अपनी अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखने वाला था। जब दिल को लगाया गया तो वो बंदा जब रिकवर हुआ तो उसकी स्टडी की गई, अब वो जो हेल्थ से इतना गाफिल था वो बाद में बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रखने वाला हो गया, और गोश्त की जगह उसने सब्जियों को पसंद करना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि दिल के ट्रांसप्लांट करने से सिर्फ पंप ही ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर जो ब्रेन है वो भी ट्रांसप्लांट, उसने भी उसकी शख्सियत में एक तब्दीली पैदा कर दी, ठीक है, शख्सियत में तब्दीली पैदा कर दी, यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो उसकी इस तरह की, लेकिन ईमान वाला नहीं बन गया वो, ये नहीं हुआ कि उसका दिल चेंज हो गया तो अब वो ईमान वाला बन जाएगा, नहीं, ईमान को तो अल्लाह ताला ने अकल के साथ रखा है, दिल के साथ नहीं, ठीक है, और अकल जो है ना वो दिमाग के साथ रखी, ब्रेन डेड मीन्स डेड, और जिसका ब्रेन चल रहा हो तो वो चल रहा होता है, दिल की तरह ही खराब हो जाए, ठीक है। बहरहाल फैसले करना, ईमान के बारे में इख्तियार करना या ना इख्तियार करना, इसका ताल्लुक जो है वो दिल के साथ, जज्बात, दिल को जज्बात के साथ रखा, ठीक है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, और बहुत ये भी बहुत तवील और तफसीली हो सकती है, उसमें भी जाने से फायदा नजर नहीं आता। तो बहरहाल तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो उसकी चेंज हो गई, क्योंकि उसका दिल जो है बाकायदा चेंज कर दिया गया। दिल की तवज्जो पर साइंसी तहकीक, ये जो है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम तो ओवर हो चुका है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे पढ़ लेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना हो या कुछ बताना हो तो कुछ चैट पर करके बता सकते हैं। चलो, कोई सवाल जवाब वगैरह नहीं है, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।